संतप्त मानस संत हैं, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। उनचासवीं गाथा की चर्चा चल रही है, जिसमें अपन ने अरस, अरूप, अगंध, स्पर्श और अशब्द इन पांच बोलों का अर्थ समझा। एक एक का अर्थ छह छह प्रकार से किया, इस तरह 30 बोल हो गए, इनकी चर्चा की है। अब इसके बाद में अनिर्दिष्ट संस्थान, अव्यक्त, अलिंग ग्रहण, चेतना गुण से समृद्ध है, इन विशेषणों की चर्चा भी मैं समझता हूं कि ये 14 तारीख तक जो अपन ने कार्यक्रम रखा है इसमें हो जाएगी। पर हम समय सार को शुरू से अंत तक चला रहे हैं, तो फिर अब अगला शिविर आएगा उसमें 50 गाथा उसके आगे की चीज चलेगी। तो ये जो प्रकरण आगे चलेगा 49वीं गाथा का, उसको या तो आप घर बैठे सुन सकते हैं इंटरनेट पे, या फिर कैसेट के माध्यम से ही सुनना पड़ेगा। तो अभी इसका समापन मैं आज करना चाहता हूं इन पांच बोलों का और एक एक के 6 बोल लगभग सभी एक से हैं। तो इनमें शुरू के जो 2 बोल हैं, एक है पुद्गल द्रव्य से भिन्न और पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न, जीव की बात है। तो इसमें स्पष्ट रूप से जो पर पुद्गल है, पुद्गल द्रव्य है, उससे भिन्नता की सिद्धि की है, उससे भेद विज्ञान कराया गया है। और इसका सर्वाधिक महत्व है, यही कारण है कि जो ये कहा जाता है कि देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु और है याही को विस्तार। ये मैं समझने ना कि किसी हिंदी कवि का दोहा है, एक मूल में आचार्य का छंद है और उसका बिल्कुल पद्यानुवाद है। तो मैंने अपने किताबों में लिखा है, तो मूल कहाँ का है क्या है उसको भी कोट किया है, इस वक्त मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। स्टोव देश में ऐसा छंद है जो हमारे विद्यार्थियों को याद है, उसका बिल्कुल अक्षर सा अनुवाद है, इसमें नमक मिर्च भी मेरा नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि ये जो देह जुदा और आत्म जुदा, और देह से भेद विज्ञान हो गया तो हो गया काम, वही बात पुद्गल माने थे, पुद्गल की बनी हुई है ना, इसलिए ने उस पुद्गल और बड़ा करके पुद्गल कह दिया। लेकिन इसमें सब, क्योंकि बाकी के जो 5 द्रव्य हैं, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, तो हमारे गे मात्र हैं बस। जैसे एक क्षेत्रावकाश संबंध इस पुद्गल से है, स्त्री पुत्रादि से जैसे रागात्मक संबंध है, ऐसा संबंध हमारा आकाश से धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य से थोड़ी है ना, समझे ना। इसलिए उनको अपन गे में डाला है और उनसे भेद विज्ञान की बात 4 और 5 बोल में आएगी। ये पहले और दूसरे बोल कौन है क्या है, मैं आप कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य से भिन्न होने से यह आत्मा रस रूप नहीं है, पुद्गल द्रव्य का जो गुण रस उस रूप नहीं है इसलिए अरस है, पुद्गल द्रव्य का गुण जो रूप उस रूप नहीं है इसलिए अरूप है, पुद्गल द्रव्य का जो गुण स्पर्श उस रूप नहीं है इसलिए स्पर्श है, पुद्गल द्रव्य का जो गुण गंध उससे अगंध है, और पुद्गल पर्याय जो शब्द उस रूप नहीं है इसलिए अशब्द है। पुद्गल पुद्गल की बात आई। अब दूसरा बोल कर पुद्गल से ही द्रव्य से ही भिन्न नहीं है, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न है, और दूसरा बोल ये है, तो दोनों पुद्गल ही के हुए, पुद्गल के द्रव्य गुणों पर्याय से भिन्न है, और अशब्द में पर्याय की बात आ गई। तो पुद्गल द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय से ये भगवान आत्मा भिन्न है, इतनी बात शुरू के 2 बोलों में स्पष्ट की गई है। अब तेरे अंदर में कथ्योप संभाव। तो यहां पर राग को नहीं पकड़ के, जैसे राग भी आता है भाव कर्म, तीसरे बोल में कहा द्रव्य कर्म इसका स्वामी नहीं है, क्योंकि इंद्रियां पुद्गल की बनी है और पुद्गल द्रव्य का स्वामी नहीं है ये आत्मा, इसलिए उसमें एकत्व का निषेध किया था पुद्गल के साथ में और इसमें पुद्गल के स्वामित्व का निषेध किया। ये जो द्रव्य इंद्रिया से हम देखने का काम करते हैं ना, ये पुद्गल की बनी हुई है आंख का अंधा, और भगवान आत्मा इनका स्वामी नहीं है। स्वामी नहीं है कि भगवान आत्मा की आज्ञा में नहीं है, भगवान आत्मा कहेगा तुम आत्मा को देखो तो कहते मैं नहीं देख सकती, बस मुझसे दिखवाना हो तो पुद्गल के देखने में निमित्त को आ सकती हूं, मैं ये आत्मा के काम नहीं आऊंगी। तो कहां इसमें आत्मा की आज्ञा चली? वास्तव में तो पांच इंद्रियों के विषय कि हम लोलपी हैं, तो इंद्रियों की पूर्ति विषय की पूर्ति में वो जो इंद्रियां चाहती हैं वो ही हम करते हैं, वो हमारा स्वामी है। लेकिन यहां ये भी बताना चाहते हैं कि तुम्हारा उसके साथ स्वस्वामी संबंध है ही नहीं, न वो तुम्हारा है न तुम उनके। फिर क्षयोपम ज्ञान लेकर भाव इंद्रिय लिया, ख्याल में ना, तो इसे क्षयोपम ज्ञान की मुख्यता है। तो ये कहते क्षयोपम ज्ञान रूप भी तुम नहीं हो, ये चौथे बोल में किया। अब लेकिन चौथे बोल में भावेंद्री को लिया, द्रविंद्री और भावेंद्री, तीसरे और चौथे बोल में द्रविंद्री और भावेंद्री इस रूप से लिया। अब पांचवा और छठवां बोल है जो मार्मिक है, वो सिर्फ ज्ञाता के संबंध की दृष्टि से है कि तेरा पर के साथ ज्ञाता के संबंध भी नहीं है, क्योंकि एक संबंध किसी भी प्रकार का जुड़ है तो बस फिर वो सब प्रकार के ही संबंध जोड़ लेता है, ख्याल में ना। तो एक ही नहीं है, एक चंद्रमा ऐसे दिखा, अब चंद्रमा का तो कोई लेना देना मन नहीं है इसे, बिल्कुल अलग है, लेकिन चंदा को मामा बना लिया, चंदा मामा आ जा, मैंने उससे भी अपना संबंध रिश्तेदारी लगा ली, समझ गया ना। मैंने कोई भी गेय पदार्थ देखे, कमलनी जलहर बसे और चंदा बसे आकाश, और जाकी जिसमें भावना सोता ही के पास। हमें अपनी भावना से जोड़ लिया, तो कमलनी से चंद्रमा का भी लेना देना नहीं था, दोनों का समकाल है। हम कहने लगे चंद्रमा की वजह से कमलनी खिलती है, कमल को खिलने से चंद्रमा कमलनी बने वो होती है, वो जब कमल खिलता है सूर्य के उदय होने पर, और कमलनी समझ लिए जो लिखा ना चंद्रमा के उदय में, अथवा उसका दूसरा नाम है कुमुद और कमल। कुमुद जो है उसे कहते हैं जो चंद्रमा के उदय होने पर खिलता है, और कमल उसे कहते हैं जो सूर्य के उदय होने पर खिलता है। माने इतने दूर के भी हम संबंध जोड़ लेते हैं, ख्याल नहीं ना। और दोनों के बीच में वज्र की दीवाल है, वज्र की दीवाल है माने क्यों, वज्र का एक वज्र की में जो परमाणु है वो क्या है, पुद्गल ही है ना। तो बोलो ये आकाश का जो बीच में प्रदेश है वो पुद्गल के परमाणु से ठसाठस भरा है क्या नहीं, तो कितनी बड़ी दीवाल हो गई सोच लो, कितनी मोटी है वो दीवाल, यहां से लेके चंद्रमा तक की इतनी मोटी दीवाल है जो किसी से तोड़ी नहीं जा सकती, फिर भी हम तो जोड़ लेते हैं। तो इसलिए कहते हैं गे गाय संबंध। तो इसमें गजब की बात यह है कि और मैं तो सब तरह के संबंधों से अस्वीकृति की, देह तेरी है ही नहीं, किसी में नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं सब। इसमें कहते हैं कि पहला बोल पांचवा पहला माने पांचवा बोल कहता है कि अकेले तुम्हें को थोड़ी जानते हैं, अकेले रस को ही थोड़ी जानता है आत्मा, वो तो सबको जानता है, उल्टा सबको जानना स्थापित किया। और इस तरह के आधार पर ये गेय गायक संबंध भी नहीं है, सबको जानते, तेरे से थोड़ी है, गेय गाय संबंध स्वीकार करके कुछ संबंध नहीं है कि साहब आपने उसको ऐसा ऐसा सहयोग किया कि हम तो सबको तैयार हैं, कोई ऐसा आदमी आपके पास हो तो बोलना बताना उसको भी करेंगे हम। क्यों कहते कि नहीं कह देते, हमारे लिए सब खुला है, हमारे यहां हिंदू मुसलमान का भी भेद नहीं है। क्या हमारे यहां देगम्बर से तामर का भी भेद नहीं है, हमारे यहां विद्यार्थी भर्ती कोई भी आम भर्ती करेंगे, क्यों है क्या नहीं है। हम यही कहते हैं ना कि हम उनको कर लिया, उनको कर लिया, उनको कर लिया, तो जिन जिनको कर लिया उनका हमने पक्ष किया है, ये हमने पक्ष नहीं किया है ये बताने के लिए। हम तो ये कहते हैं हमारे पास तो जो योग्य विद्यार्थी आया हमने उन सबको भर्ती किया है, पर इससे भर्ती उनको किया तुम्हारा लड़का भर्ती नहीं हुआ, वो अयोग्यता तो नहीं हुआ, योग्यता तो हुआ, हमने किसी योग्य को छोड़ा नहीं। तो इस तरह से हम निष्पक्ष भाव सिद्ध करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि वो सबको जानता है, अगले तुम्हें को नहीं जानता है, रसोई को नहीं जानता है। रस को जानने से उसे हम सरस नहीं कह सकते, क्योंकि सबको जानता है तो सरस क्यों कहेंगे, सरस कहेंगे, स्वरूप कहेंगे, सगंध कहेंगे, फिर तो बहुत झगड़े खड़े हो जाएंगे। क्यों देखो कैसी विचित्र स्थिति है कि अपने बाल बच्चों पर खर्चा करें, उन्हें पढ़ाई लिखाई में खर्चा करें, तो आज तक किसी ने ये नहीं कहा होगा कि तूने परोपकार किया हो तुझे पुण्य बन जाएगा, पर न वो जानता है, इतना गोमड़सार तो वो भी जानता है कि ये तो मेरे बच्चों को कर रहा हूं, इसमें काय का धर्म, क्यों मानता क्या नहीं मानता। लेकिन वो बच्चा यदि हमारा बहन का हो, हमारे साले का हो, तो उसमें थोड़ा धर्म जुड़ जाता है, फिर गौरव के साथ हम कहने लगते हैं कि मैंने अपने भांजे को भी पढ़ाया, मैंने सारे घर को भी पढ़ाया, सब रिश्तेदारों को योग्य बना दिया, ये कर दिया, अपने बेटे को योग्य बना दिया कि कोई दीन नहीं हटता है, और उसमें थोड़ा धर्म किया मैंने। और फिर वो यदि क्यों पूरी अपनी जैन समाज के बच्चे को करे तो फिर थोड़ा और महान हो जाता है, फिर उसके गीत हम आत्मा के गीत गाना छोड़कर उनके गीत गाने लगते हैं, साहब गाने लगते कि नहीं गाते, कितना महान है, कितना महान है। और फिर वो बड़े गौरव के साथ कहता है हमने कोई दिगम्बर से तांबर का भेद नहीं किया, सबको किया, तो वो और महान हो जाता है। और वो हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करे तो वो और महान हो जाता है। ये क्या है? अरे भाई ये तीर्थंकर प्रकृति कैसे बनती है मालूम आपको? 16 कारण भावनाओं से बनती है, और 16 कारण भावनाओं पे मैं कभी प्रयत्न करूंगा। जिस साल में यहां आया था उस साल मैंने किए थे 1 महीने तक लगातार। अब उस जमाने में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि वो कैसेट इस वक्त उपलब्ध होते, लेकिन मेरे दिमाग में 16 कारण भावना पे किए थे पूरे व्याख्यान। तो उसमें सिर्फ 2 ही भावना ऐसी हैं जो तीर्थंकर प्रकृति के बनने के लिए अनिवार्य है, बाकी 14 की छुट्टी भी रह सकती है। कौन कौन सी 2? एक तो दर्शन विशुद्धि और एक वात्सल्य, ख्याल नहीं ना। 2 भावनाएं ऐसी हैं, और उस 16 कारण पूजन की जयमाला में ये सब बात लिखी है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको कि शील सदा दृढ़ जो नर पाले सो औरन की आपदा टाले। क्या अर्थ है इसका? तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है उससे, तुम्हारा भला नहीं होने वाला है। लिखा साफ औरन की आपदा टाले। मैं नहीं बोल रहा हूं, पूजा में लिखा कि नहीं लिखा? शील सदा दृढ़ जो नर पाले सो औरन की आपदा टाले। आपने अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया तो सारी माताएं बहनों की आपत्ति टल गई आपकी तरफ से। क्या सुरक्षित हो गई कि नहीं हो गई? तुमने अचौर्याण व्रत का पालन किया तो सबकी तिजोरी सुरक्षित हो गई, पर नहीं टली क्या नहीं? तुमने अहिंसाण व्रत का पालन किया तो सबका जीवन सुरक्षित हो गया। तुमने सत्यान व्रत का पालन किया तो सब लोग धोखा खाने से बच गए। झूठ बोल बोल के तुम धोखा देते हो ना, बच गए कि नहीं बच गए? और तुमने परिग्रह सीमित रखा तो थोड़ा दूसरों को भी मिल गया, उनकी भी दो रोटियों की व्यवस्था हो गई, समझ गया ना? तो और इनकी आपदा टाले हैं कि नहीं है? कहां लिखा कैसे तीर्थंकर त्रिवेदी तो बनेगी? क्यों नहीं था? ये तो है ना ज्ञानाभ्यास, वो तो उससे तो ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महातम नाही। उसके तो मोह रूपी अंधकार खत्म होगा, तीर्थों का दुखी नहीं बनेगी। ये कहां लिखा बताओ? अब एक एक पे सोचना, मैं सब नहीं सुनाऊंगा, अंदाज लग गया ना आपको। और वहां लिखा है बत्सल अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर। अब क्या होता है ऐसा कि जब किसी जीव को सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव को, ज्ञानी धर्मात्मा जीव को ऐसा भाव आता है कि जो भाव जो तत्व मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं सारे जगत तक कैसे पहुंचा दूं? एक भी आदमी ऐसा नहीं रहे जो उस तत्व ज्ञान से वंचित रह जाए। ऐसा वात्सल्य भाव, ऐसा नहीं सबको रोटी दाल की व्यवस्था कर दूं, कोई रोटी कपड़ा और मकान से कमी न रह जाए, ऐसे वात्सल्य से नहीं। क्या सिकरचंद जी? तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है। क्यों? वो एक के हित की कामना नहीं करता है, और उसको ये दिक्कत महसूस होती है। क्या दिक्कत महसूस होती है? कि मैं क्या करूं, अब मैं तो एक ही भाषा जानता हूं, गुजराती में बोल नहीं सकता, मैं गुजरातियों को कैसे समझाऊं? मराठी में बोल नहीं सकता, मराठी वालों को कैसे समझाऊं? कन्नड़ जानता नहीं हूं, कन्नड़ वालों को कैसे समझाऊं? उसकी प्रॉब्लम अंदर में, उसके अंदर में ये रहता है। तो कहते तुम चिंता मत करो, ये तीर्थंकर प्रकृति जो तुम्हें बंधी है इसके उदय में तुम्हें ऐसा संयोग प्राप्त होगा कि तुम एक भाषा में, एकाक्षरी भाषा में, अनक्षरी भाषा में बोलोगे, सिर्फ ओ ऐसा बोलोगे और सब लोग अपनी अपनी भाषा में समझ लेंगे, भाषा की समस्या सॉल्व। 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाएं। बोलो क्यों हुआ? उसमें भाव था ना कि मैं सबको कैसे समझा दूं, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली को भी मैं कैसे समझा दूं? अकेले आदमियों को ही नहीं, अकेले देवियों को तो है ही नहीं, तो उनके समोसरा में कुत्ते बिल्ली को भी बैठने की व्यवस्था थी, वे भी पहुंच गए, देव भी पहुंच गए, सबके कल्याण की भावना थी ना। तो वो राज जब अपने बाल बच्चों तक सीमित होता है तो पाप भाव कहलाता है, और जब उसकी सीमा तोड़ के बाहर निकलता है तो वो पुण्य कहलाने लगता है, और जो जो सीमा उसकी बढ़ती जाती है क्यों तो वो पुण्य महापुण्य कहलाने लगता है। लेकिन वो आत्म तत्व की मुख्यता होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं सारे जगत को मैं रुपये पैसे की व्यवस्था कर दूं, रोटी दाल की व्यवस्था कर दूं, वो नहीं। क्यों? इसलिए कि आपने रोटी दाल की व्यवस्था कर दी सुबह के सबके खाने की, मेरी तरफ से स्वामी वात्सल सुबह का सबके खाने के लिए, शाम का क्या होगा? शाम की कह दी तो सुबह का क्या होगा? क्यों? तो एक के जिंदगी भर की कर दी तो दूसरे का क्या होगा, तीसरे का क्या होगा? सबकी और अनंत काल तक भोजन की व्यवस्था कोई कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो ये कह रहा भाई धर्म नहीं, वो बात नहीं थी, समझ गया। लेकिन सारे जगत को एक साथ तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो ऐसी भावना किसी की हो सकती है, और वो निष्पक्ष भाव से कोई भी आओ सुनो। आता भक्तांबर का एक काव्य आता है दिव्य ध्वनि वाला, बोलो किसी को याद हो तो। दिव्य ध्वनर तत्व है ना, क्या है बोलो बोलो पूरा छंद। उसमें ये साफ शब्दों में लिखा है, खेदं निर्वेदोनतिते अस सा प्रवादी। खे माने आकाश में होने वाली उनकी दिव्य ध्वनि, उनको यश को बढ़ाने वाली ये घोषणा करती है। क्या घोषणा करती है? हे जगत के जीवो, ये सारा मेरा दरबार खुला है, जिसको आना हो आओ, बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई टिकट के, बिना कोई व्यवस्था के मेरी बात सुन लो। मानो ये दिव्य ध्वनि आएगा, वो जो है ना वो नगाड़े बजते हैं ना, क्या बोलते उसको, वत्सय को दुंदुभी खे दुंदुभी, वो खे की जो आकाश में होने वाली दुंदुभी मानो सारे जगत को अनंत सुखी होने का मार्ग सुनने के लिए आमंत्रण की घोषणा है। अब डुग्गी पटवा दो, ये डुग्गी पटवाना क्या होता है? जाहिर आमंत्रण है गुजराती की भाषा में। अभी अपन लोग हम तो इसका भेद कभी समझते ही नहीं थे। तो एक दफा हमसे सुमन भाई ने पूछा बंबई में कि पंडित जी हम आ सकते हैं आपके प्रवचन में? कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, वो उसमें लिमिटेड लोगों के लिए है कि जाहिर निमंत्रण है। क्योंकि जाहिर निमंत्रण क्या होता है? मैंने कार्ड बांटते हैं ना, जिसको तो कार्ड वाला कार्ड साथ में लेके आए, अकेले भोजन के लिए नहीं दादा, आजकल बंबई में प्रवचन के लिए भी होता है, क्योंकि हॉल एसी बुक करते हैं, सीटें लिमिटेड होती हैं, और अभी हमें असीमित लोग आ गए तो क्या होगा? क्यों? और आजकल जो मैनेजमेंट वालों का दिमाग इतना खराब हो गया है कि हम आप बताओ, हम हर एक कुर्सी पर तुम्हारा नाम लिख देंगे, तुम्हारी नाम की कुर्सी बुक हो जाएगी। वहां यहां तो हमें कमरा बुक हो जाए तो भाई बड़ी कहनी की नीमत है, वहां तो कुर्सी बुक हो जाती है। हमको देख देख के गए थे ना वहां पर अभी मंगलाचल में, तो हमारी कुर्सी कहां है वहां लिखाना, कुर्सी खोजनी पड़ती है। चल नहीं ना बोल, तो मेरे कहने का अर्थ वो ऐसी व्यवस्था नहीं है, आओ उससे तिरंग बिक्री बन जाती है, बनती है छूटती नहीं। कहना सुनने और उसमें अरबों वर्ष संसार में रहने की गारंटी हो जाती है। क्या कह रहे हैं आप? तीसंग प्रकृति बंदी इधर तो गारंटी स्वर्ग में, इसे स्वर्ग में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अब वो सोल में तक जाएगा, सर्वार सिद्धि जाएगा, तेती सागर तक हो जाएगा, पहले दूसरे में भी गया तो दो सागर तो फंस जाएगा ना। अरे पल्लवी होगी, क्योंकि वो नीचे बाजी बनता ज्योतिष तो होता नहीं समय दृष्टि, जो तिरंग बिक्री बनती है। आपने सुना ना, छाया समय दृष्टि दो चार भ्रम में मुख चला जाता है, कैसे क्या तर्क है, क्या आगम है? सीधा सच्चा तर्क है कि सम्मत दर्शन हो गया तो तिरंग ज्योति और नरक गति तो बनेगी नहीं, और मनुष्य होगा तो देवगति बनेगी, और देव होगा तो मनुष्य गति बनेगी। अब उठाया समय दर्शन हो गया तो मनुष्य था तो देव में चला गया, देव आ गया फिर मनुष्य हो गया, फिर देव हो गया, फिर मनुष्य हो गया, और 2000 सागर को निकलते हैं मनुष्य तो लिमिटेड है। क्यों? उसे ज्यादा वो रह ही नहीं सकता। अपन कहते इतने भवों में समझ गया ना, कोई 15 भव में, तो 8 भव मनुष्यों के हैं, तो 7 में 8 निकालेगा मनुष्यों के, 7 निकालेगा देवगति में स्वर्ग में, तो 15 भव होगा ना, इसे ज्यादा हो ही नहीं सकते। क्या बोलू, समझ में आएगा क्या? क्या क्या आगम प्रमाण चाहिए? ऐसे इनडायरेक्ट आगम प्रमाण बहुत होते हैं। ऐसे एक दफे मेरे से कहा था एक आदमी ने देवलाली में, वो अपना रमेश मंगल है ना, रमेश मंगल मंडल कमल, रमेश कमल के साहब श्रीमद को 800 भव का जातक मन था। कितने का? मैंने कहा तू अरबों वर्ष का कहे तो चल सकता है, 800 भव नहीं चल सकती। क्यों? कि एक नियम है जातक स्नान का कि एक असैनी का भव हो गया तो फिर नहीं हो सकता, पर सैनी के भव रहने चाहिए जतीश भाई, वो बीच के जो भव है ना वो सब सैनी के रहने चाहिए, असैनी का नहीं होना चाहिए। तो 800 भव सेनी के कैसे होंगे बता तू, क्योंकि मनुष्य में तो इतने ही होते हैं, विज्ञानी समय ऋषि तो नरक देवों में से जाएंगे ही नहीं, और देव में अरबों वर्ष तो हो सकते एक ही भव में यार मेरे पास देवगति में, लेकिन भव 800 कैसे होंगे बता मेरे को। यदि सम्मान दर्शी रहा और सम्मान दर्शन कारण रहा तो ऐसे सैनी पंचेंद्री के 800 भव बता मेरे कैसे होते हैं, तो मैंने प्रचर में भी कह दी, बस खत्म हो गया। उसी दिन से शत्रु हो गया मेरा बेचारा, मेरा और कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं जाना नहीं। भाई ऐसी तो बात कहो ना, गप पे ऐसी तो लगाओ कि जचे। गप्पे ही लगाना है तो लगाओ, लेकिन ऐसी तो लगाओ कि जचे। तो वो दिव्यधनी की बात अपनी चल रही थी कि उससे तो वो ये गाय संबंध कहते हैं सबको सबका कल्याण हो, तो उसको अपन ने कितना महान माना। सारी दुनिया को जाने तो उसमें पक्षपात पर आरोप नहीं लग सकता कि सारी दुनिया के साथ पक्षपात नहीं किया, कि पक्ष में किया ना सारी दुनिया के पक्ष में है? अरे उसको पक्षपात नहीं कहते हैं, एक को करे और दूसरे को नहीं करे उसको पक्षपात कहते हैं, समझ गए ना आप ना। तो वो कहते हैं यही तर्क दिया पांच में बोल में, क्या तर्क दिया भैया पांच में बोल में, मुझे बता आ रहा था, कहता आगे बैठूंगा आगे पंक्ति में, कभी थोड़ी आगे में होता है क्या है? अकेले रस को थोड़ी जानता है, अकेले रूप को थोड़ी जानता है, अकेले गंध को थोड़ी जानता है, अकेले स्पर्श को थोड़ी जानता है, अकेले शब्द को थोड़ी जानता है, सबको जानता है। इसलिए अरस है, अरूप है, अगंध है, स्पर्श है और असभ्य है, समझ गया ना। पांचवा बोल ये है, और छठवा क्या है फिर, वो भी जानने से संबंधित है। याद है कहा मैंने याद करा दूंगा, हाँ तुझे होगा ठीक है, तुम तो शास्त्री हो गया ना फाइनल, होगा तुझे होगा। कहते हैं कि सारी दुनिया को जानने रूप परिणमित होता है, बोलो कि भगवान आत्मा सर्वज्ञ भगवान आत्मा की बात, सर्वज्ञ ही हो सकता है। जानने रूप परिणमित होने की शक्ति वाला है, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव को लेंगे तो शक्ति वाला ही कहना पड़ेगा, नहीं तो सर्वज्ञ पर्याय आ जाएगी, क्यों समझ में है ना। लेकिन पर रूप जिसको जानता है उस रूप परिणमित तो नहीं होता, क्यों जिससे हमने दो शब्द मीठे बोल लिए उसके हो गए, वो हमारा हो गया, क्यों मुस्कुरा के बोल लिए तो अपना हो जाता है। एयर होस्टेज हो ना, कितनी मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलती है अपन से, अपन उसका कोई गलत अर्थ समझने तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उन्हें तो इस बात की तनख्वाह मिलती है, उन्हें तो इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या जब आए दरवाजे पे खड़े हो जाना और जो आते ऐसे बहुत पहचान के हो बोले नमस्कार करना, जाते वक्त भी कहना नमस्कार करना, और आइए द्वारा पधारना, वो बोलते हैं आपको हमारी यात्रा सुखद रही होगी, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप द्वारा भी पधारिए और हमें सेवा करने का मौका दीजिए, क्यों ये सब औपचारिक ही है ना। उतने कहने से कोई कहने के लग जाए कि हमने तुम्हें एयर होस्टेस के साथ हंसते हुए बात करते देखा, बोलो क्या करे। वो मुस्कुराकर स्वागत करे तो मुस्कुराकर जवाब देना कि नहीं देना। तो उसमें कुछ नहीं है, वो कह रहा है कि सारे जगत को जानता है, तो जानने रूप सारे जगत को जानने रूप परिणमित होना तो भगवान आत्मा का स्वभाव है, क्यों सर्वज्ञ शक्ति भगवान आत्मा में है ना, इससे सारे जगत का नहीं हो जाता और सारा जगत उसका नहीं हो जाता, ऐसा भगवान आत्मा है। इसलिए वो रस को जानता तो है, रस के जानने रूप तो परिणमित होता है, लेकिन रस रूप परिणमित नहीं होता, रूप के जानने रूप तो परिणमित होता है लेकिन रूप रूप परिणमित नहीं होता, गंध के जानने रूप तो परिणमित होता है लेकिन गंध रूप परिणमित नहीं होता, स्पर्श के जानने रूप तो परिणमित होता है पर स्पर्श रूप परिणमित नहीं होता, शब्द के जानने रूप तो परिणमित होता है और लेकिन शब्द को रूप परिणमित नहीं होता। इसलिए वो आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, स्पर्श है, कि सब याद हो गए आपको। अरे तुम्हें हो जाना चाहिए, इसमें क्या दम है। तो पांच गोल हैं, एक एक में छह छह लगने हैं, बिल्कुल एक से लगने हैं, जिसमें अपने छह दिन आठ दिन दस दिन खा लिए और फिर भी याद नहीं हुए तो हम क्या करें, क्यों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल घुट जाना चाहिए, सपने में भी विकल्प आ तो नक्की हो जाना चाहिए। अब इसके बाद में इस छह बोलों की समाप्ति, पांच बोल के छह छह तीस बोल समाप्त हुए। अब आगे कहते भगवान आत्मा अनिर्दिष्ट संस्थान है। ये अनिर्दिष्ट संस्थान क्या होता है? देखो निर्दिष्ट माने होता है कहना, अपने निर्देश दिया, तो निर्दिष्ट माने कहा हुआ कहना, और अनिर्दिष्ट माने कहना संभव नहीं है। तो अनिर्दिष्ट माने जिसका कहना संभव नहीं हो उसे बोलते अनिर्दिष्ट। और ये संस्थान क्या कि भगवान आत्मा का आकार, संस्थान माने आकार। तो भगवान आत्मा का क्या आकार है ये बताओ हमें। तो कहते भैया कह नहीं सकते क्या आकार है। ये भगवान आत्मा का एक गुण है, कौन सा ना दादा, कि हम कह तुम नहीं कह सकते तो भगवान आत्मा का गुण कैसे हो गया। ये तो तुम्हारी कमजोरी हुई, क्यों ये भगवान आत्मा का गुण कैसे हो गया। कहते भाई ऐसी शक्ति उसके अंदर विद्यमान है कि उसको कहा नहीं जा सके, उसके आकार के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसका नाम है अनिर्दिष्ट संस्थान। ये शब्द से हो गया ना क्लियर। अब देखिए पूछो कैसे शास्त्रों में तो लिखा है कि निश्चय नय से असंख्यात लोक प्रमाण है, और व्यवहार नय से शरीर के प्रमाण है, जो शरीर में है वो शरीर के आकार का है। तो आगे ना दोनों कह दिया, यहां कह रहे कह नहीं सकते और कह दिया, क्यों सर आपकी डार में दर्द है? कहां डार में दर्द है, कितना है? कि पंडित जी कह नहीं सकता, कह तो दिया ना, कह नहीं शब्द से कह दिया कि नहीं किया, क्यों मैं कह नहीं सकता इस शब्द से आपने कहा कि नहीं कहा, तो कहा कि नहीं कहा क्या माने इसे, है? इसे कहा माने कि नहीं कहा माने। अब कितनी तकलीफ है नहीं जानता हूं, मैं कुछ कह नहीं सकता, तो ऐसा अकलंग देव ने मजाक उड़ाई है। ये ऐसी बात है, मौन वृत्त को हम परान प्रतिपादयन निब, राजवार्तिक में लिखा है। क्या अर्थ है इसका? मैं मेरा आज मौन वृत्त है, मैं मौन वृत्ति हूं, ऐसा दूसरे से कहते हुए के समान। काय का उदाहरण है? स्वचन बाधित दोष होते हैं ना, इसमें हेतु के दोष, तो स्वचन बाधित है ना। अब कह रहा कि मैं क्या मेरा आज मौन है और ये कह रहा है, तो मौन रहा क्या? मौन वृत्त को हम परान प्रतिपान निर, मैं मौन वृत्ति हूं ऐसा दूसरे से कहता हुआ आदमी का मौन वृत्ति है कि नहीं है बोलो। ऐसा बता रहा कि इतना दुख हो रहा है मेरे को कि मैं कह नहीं सकता, और कह रहा है कि भैया थोड़ा कहो कि तुम घबराते क्यों हो, मैं एक घंटा के पहले छोड़ने ही वाला नहीं, एक घंटा तक बताऊंगा कि मैं कैसा दुखी हूं और अंत में कहूंगा मैं कह नहीं सकता। होता है दो शब्द, क्या अब डॉक्टर साहब दो शब्द बोलेंगे, और भालू ने आध घंटा बाद कहते एक शब्द हुआ, दूसरा शब्द कभी पूरा होता ही नहीं है, चलता रहता है। तो वो अनिर्दिष्ट संस्थान माने कह तो दिया ना, क्या असंख्य प्रदेशी। अब मैं आपसे पूछता हूं, कह तो दिया निश्चय से, अब तुम्हारी समझ में आ गया ना कैसा होगा असंख्य आकार, क्या आकार का मतलब तुम समझते ही हो ना, ये जो पुस्तकाकार बोलते ना इसे, ये पुस्तकाकार है। तो ऐसी जो पुस्तक का आकार आपकी समझ में आ गया, ऐसा वो भी आ गया होगा ना, असंख्यात प्रदेशी कहा आत्मा का आकार, तो समझ में आ गया होगा क्या? नहीं, कहां कह दिया है? यही तो बता रहे, वो तो प्रदेश असंख्य हैं उसमें, लेकिन वो किस आकार में है? तो कह रहे जिस शरीर में रहेगा उस शरीर में है। संसारी जीवों का तो निबट गया कि मोक्ष वाले कि अंतिम शरीर से कुछ कम, तो आगे शरीर से नाप तो किया, शरीर के आकार का हुआ तो वो तो आकार शरीर का है, उसका कहां आत्मा का? वो तो शरीर का आकार हुआ ना, ख्याल नहीं ना? इसलिए अब तुम शरीर के बिना बोलो तो असंख्यात प्रदेशी, इसलिए कहते उसका संस्थान हम कह नहीं सकते हैं, इसलिए वो अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। और अनिर्दिष्ट संस्थान को चार बोलों से समझाया है, चार बातें चार तरीके से समझाया है, उसी चर्चा अपन कल करेंगे।